शांति। अभी का हमारा विषय है विकर्माजीत, जो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि विकर्माजीत बनने के लिए क्या करना है। बाप को याद करते रहना है, और ये विकर्माजीत स्टेज हमारी अंतिम स्टेज है। मुरली के अंदर ऐसे कई शब्द हैं जिनका अंत जीत शब्द से होता है। एक होता है कर्मेंद्रिय जीत, एक होता है मन जीत। तो मन क्या है? सूक्ष्म इंद्रिय है। तो इंद्रियों को जीतना है, फिर चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है। तो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत, और फिर आता है माया जीत। उस माया जीत में फिर बहुत सारे अलग अलग शब्द हो सकते हैं, मोह जीत, क्रोध जीत, क्योंकि माया माना विकार, और विकार माना ही काम क्रोध लोभ मोह का। फिर उस एक विकार के आगे जीत लगा दो तो माया जीत। और एक आता है प्रकृति जीत, कि प्रकृति के जो पांच तत्व हैं उन पर भी हमें जीत प्राप्त करना है। और लास्ट में आता है विकर्मा जीत, इसके अंदर निद्रा जीत भी आता है एक, है ना। अगर बहुत बारीकी से मुरली को देखने जाएंगे तो ऐसे कई शब्द मिलेंगे जिनका अंत जीत शब्द से होता है। तो आज हमें देखना है विकर्माजीत। विकर्माजीत का सरल अर्थ क्या होता है? विकर्मों पर जीत प्राप्त करना। और उसका सरल अर्थ क्या होता है? विकर्मों का संन्यास करना। बाबा इसीलिए हमें कहते हैं ना, उनका है हद का संन्यास और आपका है बेहद का संन्यास। वो हद का संन्यास क्या करते हैं? घर बार छोड़ देते हैं। और बेहद के संन्यास में बाबा कहते हैं भल घर बार में ही रहो, परंतु किसका संन्यास करो? विकारों का संन्यास करो। तो विकर्माजीत बनना माना विकर्मों का संन्यास करना, या दूसरे शब्दों में कहें सुकर्मी बनना। और सुकर्मी का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बनना। जब हम नए नए होते हैं, 7 डेज कोर्स कर रहे होते हैं, कर्म फिलॉसॉफी का लेसन आता है तो हमें सिखाया जाता है कर्म, अकर्म, विकर्म, श्रेष्ठ कर्म या सुकर्म, ऐसे सिखाया जाता है ना। तो थोड़ा सा इस पे हम, क्योंकि विकर्म भी हम तभी समझ पाएंगे जब हमें इसके पहले वाली बातें भी समझ में आएगी। तो कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कहते हैं क्रिया को कर्म कहते हैं। क्रिया को ही अगर कर्म कहते तो क्रिया और कर्म दो शब्द अलग नहीं बनते। क्रिया को कर्म में क्रिया है जरूर, पर क्रिया को ही कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब कर्म कर रहे हैं उसके साथ मन भी अटैच है, उसके साथ मन भी अटैच है, तो तब हमारे कर्म होते हैं। अभी आंख देख रही है परंतु मन नहीं है अटैच। लोगों को दिख रहा होगा कि देख रही है पर नहीं देख रहे, मन अटैच नहीं है, तो होता है ना ऐसे। तो मन की भी अटैचमेंट जब होती है तो वो क्रिया कर्म बन जाती है। आपने मेरे पर गुस्सा किया और बदले में मैंने भी आप पर गुस्सा किया। ये क्या है? ये कर्म है, ये कर्म है। क्या है ये? ये प्रतिकर्म है। आपको पता है फीडबैक शब्द का मतलब क्या होता है? प्रतिभाव, रिप्लाई, प्रति उत्तर, कि आपने जो पूछा उसके बदले में जो आया। ऐसा ही होता है ना, जो बदले में आ रहा है। तो अगर किसी ने मेरे पर गुस्सा किया और फिर मैंने भी गुस्सा किया तो किसकी गिनती में जाएगा? कर्म की गिनती में या प्रतिकर्म की गिनती में? प्रतिकर्म की गिनती में। क्लियर हो रहा है ना? अब हम अपने को देखें, सारा दिन जो हम कर्म करते हैं, क्या वो कर्म होते हैं हमारे, प्रतिकर्म होते हैं? ज्यादातर क्या होते हैं हमारे? प्रतिकर्म होते हैं ना। उसने ऐसा बोला तो फिर मैंने ऐसे बोला, उसने डांटा तो मैंने भी डांटा, उसने एक झापड़ लगाई मैंने दो झापड़ लगा ली, उसने मेरे को धोखा दिया मैंने भी धोखा दे दिया। तो ये हमने किया नहीं, सामने वाले ने मेरे से करवाया। तभी तो हम बोलते आप मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो। हम नहीं कर रहे हैं, आप हमें करवा रहे हो। और अगर मैं नहीं कर रही हूं और सामने वाला मुझसे करवाए तो मैं अधिकारी या मैं गुलाम? तो सोचो, सारा दिन हम कौन सी जीवन जी रहे हैं, कौन सी जीवन जी रहे हैं? और बनना क्या है? स्वराज्याधिकारी सो विश्वराज्याधिकारी, यही कहते हैं ना हम। और इसीलिए कहा कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत, माया जीत, क्योंकि माया माना ही क्रोध। अब क्रोध को अगर नहीं जीता तो सामने वाला क्रोध करेगा और मेरे से भी क्रोध करवाएगा, तो मैं तो गुलाम हो गई। इसीलिए कहते हैं अगर किसी ने आप पर गुस्सा किया और बदले में आपने भी गुस्सा किया, आप हार गए, सामने वाला जीत गया। आप हार गए, सामने वाला जीत गया। तो हमें क्या जीत? हमें तो जीत पहनने नहीं है ना। हम तो बोल रहे हैं हमें विकर्मा जीत बनना है, जीत तो हमें प्राप्त करनी है, विजय तो हमें प्राप्त करनी है। पर हो क्या रहा है डेली लाइफ में, जरा सोचे। यही कहा था एकांत, एकांत में बैठे अपने आप से बातें करें, क्या मैं कर्म कर रहा हूं या प्रतिकर्म कर रहा हूं? सारा जीवन मेरा सिर्फ प्रतिकर्म में चला जा रहा है, तो मैं तो किसी और की कठपुतली हो गई ना। मैं तो किसी और की कठपुतली, सामने वाला जीत गया मैं हार गया, तो कैसे मैं विकर्मा जीत बन सकता हूं? नहीं बन सकते। और यही कहा भट्टी में एकांत में बैठो। लोग यही कहते हैं जब एकांत में बैठते हैं ना, या याद करने बैठते हैं ना, अगर कमेंट्री नहीं मिलती है ना, तो हमारे अंदर से ये वाली कमेंट्री निकलती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने गुस्सा किया, फिर मैंने गुस्सा किया ना, मेरी क्या गलती है? यही बातें चल रही होती है अंदर, जो भी जीवन में घटना घटी होती है। इसी पर विचार करना है, अगर उसने गुस्सा किया फिर मैंने गुस्सा किया तो मैं तो गुलाम का जीवन जी रही हूं, बाबा का बनके भी गुलाम का जीवन। क्या फायदा बाबा का बनने का? और तब कहा ये महसूस था, भीतर भीतर जाओ, महसूस था करो, और तब कहीं अंदर से दृढ़ संकल्प आएगा, मुझे गुलामी की जीवन नहीं जीनी है, मुझे तो स्वराज्य अधिकारी बनना है, मैं कर क्या रहा हूं, आज तक मैं इसी को सोचता रहा कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं राइट कर रहा हूं, परंतु मैं राइट नहीं कर रहा हूं। और जब राइट नहीं कर रहा हूं तो मेरा राइट भाग्य का निर्माण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो विक्रमाजीत कहते, एक बार महात्मा बुद्ध के ऊपर किसी ने आके थूक दिया और महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराया, क्योंकि वो चादर से ओढ़े हुए होते थे हमेशा, तो जहां पर थूक लगी थी उसको पोंछा, और थूकने वाले व्यक्ति को पूछा, कुछ कहना है? व्यक्ति बड़ा ही असमंजस में पड़ गया। हाँ, वैसे सामने वाला क्या सोचता है, मैंने इसके ऊपर थूका तो अब ये क्या करेगा मेरे ऊपर? गुस्सा करेगा। अब ये महात्मन तो मुस्कुरा रहे हैं, थूक को पोंछ रहे हैं, और पोंछकर थूकने वाले व्यक्ति को कहते, कुछ कहना है? बेचारा तो समझ नहीं आया क्या बात क्या हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन होता नहीं है कि जिसके ऊपर हम थूके और वो पूछे ऐसा, तो वो हक्का बक्का सा रह गया। तो कहता है, आप समझे नहीं हो मुझे। कहता, मैं समझ गया हूं। नहीं, आप नहीं समझे हो, मैंने आप पर गुस्सा किया, आपने गुस्सा क्यों नहीं किया? अगर आप मुझे समझे होते तो गुस्सा करते। और महात्मा ने यही जवाब दिया, तुमने गुस्सा किया, और अगर मैंने भी गुस्सा किया तो मैं तुम्हारा गुलाम, पर मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मैं मालिक हूं अपना। पर ये बात उस दिन नहीं कही, अगले दिन कही, क्योंकि वो अगले दिन फिर आया। और अगले दिन जब फिर आया तो कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, और पैरों पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बह रहे हैं जिससे पांव भीग रहे हैं उसके पैर, महात्मा बुद्ध ने। और जब उसने सिर उठाया, महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, कुछ कहना है? तब कहता, आप समझे नहीं मुझे। कहता, नहीं मैं समझा हूं, मैंने कल भी तुम्हें समझा था, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो हम कह नहीं पाते हैं, तो गुस्से में इस प्रकार से थूक में निकल आती है ना। आप देखना, कई व्यक्ति जब हमारे प्रति नफरत से भरे हो या क्रोध से भरे हो तो शब्दों में तो नहीं कहेंगे, पर कुछ एक्शन ऐसी करेंगे। महाभारत की एक सीन आती है जिसमें धृतराष्ट्र अंदर से बहुत जल रहा था, तप रहा था भीम के प्रति, और उसने बहाना क्या बनाया, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे मिलाओ। और कृष्ण को पता था इसके अंदर में क्या चल रहा है, जब वो मिलेगा तो उसको क्या करने वाला है, दबा के कचूमर निकालने वाला है उसका। और कृष्ण ने भी चालाकी से उसकी मूर्ति खड़ी कर दी, ऐसी मूर्ति की क्या लग रहा हो, क्योंकि अंधा तो था ही वो, और कहा, ये सामने आपके भीम है, भीम ही है ना। और उसने जो अंदर में भरा था वो निकाला, और तब उसे पता चला, ये भीम नहीं है, कोई मूर्ति है। होता है ना ऐसा, अंदर में भरा रहता है तब शब्दों से हम नहीं कहते, ऐसी कुछ हरकतें कर लेते हैं। तो उसने भी यही कहा, मैं समझ गया तुम्हारे अंदर में कुछ भाव है जो शब्दों में नहीं कह पा रहे हो, तो इस प्रकार की हरकतों में आप कह रहे हो। आज भी तुम्हारे अंदर कुछ भाव है जो शब्दों में नहीं कह पा रहे हो, आंसू बहाकर, मुद्राएं दिखाकर, भाव भंगिमा दिखाकर आप व्यक्त कर रहे हो। उसने खुद कहा कि मैं भी कई बार कुछ बातें शब्दों में नहीं कह पाता हूं तो इशारों का इस्तेमाल करता हूं। तो ये है कर्म, सामने वाले ने गुस्सा किया, अगर मैंने भी गुस्सा कर दिया तो ये मैंने प्रतिकर्म किया, रिप्लाई, फीडबैक जिसे शब्द यूज करते हैं ना, प्रतिभाव, प्रति उत्तर, ये प्रतिकर्म। और इस प्रतिकर्म से हमारे विकर्म बढ़ेंगे या घटेंगे? तो हम तो इनको विकर्म गिन ही नहीं रहे ना, हम तो इसको काउंट ही नहीं कर रहे। हम कहते कहां मैंने गलत किया है, गुस्सा उसने किया तो किया, मैं ऐसे पागल थोड़ी हूं, मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि बैठ बैठ कर गुस्सा कर दूंगा मैं। मैं से कभी नहीं करता हूं, किसी से भी पूछो मैं कितना शांत व्यक्ति हूं। हम जस्टिफाई करते नहीं करते अपने व्यवहार के लिए। तो चेक करें, मैं दिन भर में अगर प्रतिकर्म करता जा रहा हूं, अर्थात वो सारा किस लिस्ट में जा रहा है, विकर्म की लिस्ट में जा रहा है। क्यों विकर्म की लिस्ट में जा रहा है? क्योंकि पहले और देख ले अकर्म, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया कि बच्चे तुम पहले परम धाम में थे, परम धाम से तुम उतरे नीचे और कर्म क्षेत्र पर कर्म करना आरंभ किया। लेकिन शुरू के दो युगों में आपका कर्म कर्म नहीं रहा, क्या रहा? अकर्म रहा। अब क्या होता है अकर्म, बोलो? हाँ, जिस कर्म का कोई फल नहीं हो। पहले दिन का लेसन जब हम पढ़ाते हैं भाई बहनों को, तो हम कहते हैं कि आत्मा के पास तीन फैकल्टी है, मन, बुद्धि, संस्कार। जब संस्कार को थोड़ा विश्लेषण करके बताते हैं तो हम कहते हैं आत्मा जो भी कर्म करती है उसकी छाप आत्मा पर पड़ती है। और इसीलिए कहा जाता है हमने चाहे कितना भी बुरा कर्म क्यों नहीं किया हो, छिपकर क्यों नहीं किया हो, किसी को न भी बताया हो, किसी से छिपा रहे हो, लेकिन अपने से नहीं छिपा सकते। छिपा सकते अपने से नहीं, क्यों? क्योंकि आत्मा ने तुरंत दर्ज कर दिया अपने रजिस्टर में, तुरंत छाप पड़ गई कि ये कर्म हुआ है। तो जब आत्मा पर छाप पड़ती ही है तो फिर फल कैसे नहीं आएगा? अकर्म की परिभाषा में आपने कहा जरूर और राइट कहा, पर सोचने की बात है कि अगर कर्म किया और उसकी आत्मा पर छाप पड़ी, फिर कर्म फल क्यों नहीं बनेगा उसका? हाँ, आत्माभिमानी स्थिति में थे तो छाप तो जरूर पड़ेगी, पर कैसी छाप पड़ेगी? कैसी वाली छाप पड़ेगी? पानी पर लकीर वाली छाप। लकीर भी तो एक छाप ही है ना, तो पानी पर लकीर कितनी देर टिकेगी? हाँ, इधर खींचो और उधर मिट जाएगी। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हमने कौन सा कर्म किया, कौन सी स्थिति में किया? आत्मिक स्थिति। और आत्मिक स्थिति माना जो मेरी ओरिजिनल है, जो मेरी रियलिटी है कि मैं हूं आत्मा। आत्मा के गुण है शांति, प्रेम, खुशी, जो भी हम साथ बताते हैं, और कर्म करते समय वही प्रकट हुआ है मेरे से। कर्म करते समय मेरे से चाहे मैंने किसी के साथ बात किया, पर बात किस रीति से किया, क्या प्रकट हुआ? प्रेम प्रकट हुआ, शांति प्रकट हुई, खुशी प्रकट हुई। आत्मा के जो मूल संस्कार है उसका अपोजिट नहीं प्रकट हुआ है, और इसलिए वो लकीर, क्योंकि सजातीय हो गई ना, जो आत्मा के संस्कार है उन्हीं संस्कारों के साथ कर्म किया है, इसलिए उसकी लकीर अलग से दिखेगी कहां? सफेद कपड़े पर आपको सफेद मार्कर दे दिया जाए लिखने के लिए, तो क्या कहेंगे? बहन जी मेरी साड़ी सफेद है, आप सफेद मार्कर दे रहे हो, लिखूंगी क्या दिखाई देगा? दूसरा कलर चाहिए। और डार्क कलर पर लिखना हो तो, और डार्क कलर दे दूं तो, बहन जी ये मार्कर से लिखूंगा भी तो कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे बहुत लाइट कलर वाला मार्कर दीजिए, क्योंकि सेम होगा तो वो उसमें छुप जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लाइन ड्रा हुई है। इसीलिए कहा सजातीय हो जाते हैं वो, और इसलिए वो अकर्म हो जाते हैं। लेकिन फिर विकर्म इसका अपोजिट, कि जो मैं हूं नहीं, मैं आत्मा हूं, परंतु क्या समझ लिया मैंने द्वापर से, अपने आप को देह समझ लिया, तो असलियत से मैं काफी दूर हो गई, और असलियत से दूर होने के कारण ही फिर भेदभाव भी उत्पन्न हो गया। पहले तो सभी आत्मा थे, और अलग अलग पार्ट बजा रहे थे, और अभी देह भान आने के बाद हम सब एक जैसे नहीं रह गए ना, अभी भेदभाव खड़ा हो गया, मैं बड़ा वो छोटा, मैं जूनियर वो सीनियर, मैं काला वो गोरा, इस प्रकार के अंतर खड़े हो गए। और जब इस प्रकार के अंतर खड़े हो गए तो अगर मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा मान मिलना चाहिए, ये मेरे से छोटा है इसको ज्यादा मान मिल रहा है, समझ में आ रही है ना बात? कामनाएं जागी, कामनाओं की उत्पत्ति हुई, और कामना की पूर्ति हुई तो लोभ अहंकार, और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध गुस्सा, और इस प्रकार एक एक विकार उत्पन्न हुआ। और विकर्माजीत मतलब ही विकार का अंश मात्र भी न रहे, ऐसा कर्म ही विकर्म। लेकिन ये तो द्वापर से तो क्या हो रहा है, सारा ही विकार विकार से हो रहा है, और इसलिए भगवान ने कहा द्वापर से तुम विकर्म ही करते आए हो। ज्ञान के बिना अगर किसी को कह दो तो कहेंगे तुम बात क्या करते हो, क्या बात करते हो, हमने ऐसा क्या विकर्म किया है, नहीं समझ पाएंगे वो। लेकिन ज्ञान की जब तक उसकी गहरी समझ नहीं होगी, वो यही कह बोल क्या रहे हो, हमने क्या विकर्म किया है, उसको लगता ही नहीं मैंने कोई विकर्म किया है, सबके साथ तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन दैहिक भाव में बोल रहे हैं ना, दैहिक दृष्टि है ना आपकी, जो कि आप हो नहीं, आप तो आत्मा हो, आप तो चैतन्य हो, और इसलिए सारा ही कर्म विकर्म में चला गया। तो इसीलिए द्वापर से आज दिन तक, कलयुग तक, जो बाबा कहते 63 जन्मों का पापों का बोझा आत्मा के ऊपर है, और इसलिए विकर्माजीत बनना है तो बाबा को याद करते रहो। अब क्या कनेक्शन है विकर्माजीत और बाबा की याद का, क्या कनेक्शन है विकर्माजीत बनना और बाबा की याद करना, बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन है। याद से विकर्म कट जाते हैं, और अग्नि में जो कुछ भी है, तो इसलिए मुझे परिवर्तन कहाँ करना होगा, सिर्फ जब योग में बैठूंगी उस समय योग अग्नि प्रज्वलित करना है और उसको जला देना, और बाकी दिन भर विकर्म करती रहूं, प्रतिकर्म करती रहो, हाँ दिन भर प्रतिकर्म करती रहूं और मानू नहीं कि विकर्म है ये, सब तो मैंने ठीक किया ना, लेकिन वो विकर्म ही हो रहा है और वो और बढ़ता जा रहा है, और बस योग में बैठूं और उसको जला डालूं, और वो योग की अग्नि भी बने उसके लिए तो उतनी पावरफुल स्थिति, दिन भर विकर्म किया और योग में बैठने से पावरफुल स्थिति बनेगी? नहीं बनेगी। और इसके लिए बाबा कहते हैं, अमृत वेले से लेकर आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अपने हर संकल्प में परिवर्तन लाओ, हर संकल्प में। भट्टी इसीलिए है, वरना तो शुरू शुरू में जब नए बच्चे होते हैं ना बाबा के, जब बनते हैं तब हर चीज को बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन वापस हम भी मैकेनिकल बन जाते हैं, बन जाते हैं नहीं बन जाते हैं। और भट्टियां उसी लिए होती है कि भक्ति से निकला, ज्ञान में आया, भक्ति में कह रहे थे ये क्या मंत्र जाप कर रहे, ये तो सब मैकेनिक है, जरा बैठ के अपने को भी चेक कर लू कि ज्ञान में आने के बाद भी उसी प्रोसेस में तो नहीं खिसक गया हूं मैं, वहीं तो नहीं सरक गया हूं, बस मुरली पढ़ना है, अमृत वेले उठ जाना है, फिर भले कितने ही झुटके मार लिए पर उठा तो सही ना मैं। मुरली क्लास में प्रेजेंस दर्ज कर दी, फिर भले उस पॉइंट को उठाया या नहीं उठाया पर एक घंटा सुन के तो आ गया ना मैं। तो कहीं हम भी तो मैकेनिकल नहीं बन गए हैं, जो हम कोर्स कराते समय जिज्ञासुओं को कहते हैं कि ये मंत्र जाप तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है, बोलते हैं ना। तो कहीं हम भी, इसीलिए बाबा कई बार बोलते हैं जिज्ञासुओं को तो कोर्स कराते हो और खुद को क्या कराओ, अभी फोर्स का कोर्स कराओ, कहते हैं बाबा। तो भट्टियां उसी के लिए है, और इसी के लिए कहा नया कुछ भी नहीं सुनाया जाएगा, सिलेबस बाबा ने बता दिया यही है, पहला पाठ ही आखिरी पाठ रहने वाला है, तो फिर नया क्या सिलेबस अभी पढ़ाया जाए। तो जो पढ़ा दिया गया है वो जीवन में कितना उतरा है उसकी चेकिंग, और उसकी चेकिंग के लिए स्वयं को साक्षी बना देना होता है, साक्षी होकर अपनी चेकिंग, नहीं तो दूसरों की चेकिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है। बाबा मुरलियों में कहते हैं दूर की नजर तेज है बच्चों की, दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं, जज, और अपने लिए लायर, वकील, दलील के ऊपर दलील। कहा ना उसने गुस्सा किया तब मैंने गुस्सा किया, मैंने ऐसे थोड़ी किया था, उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने भी धोखा दिया। तो ये बैठकर चेकिंग करनी होती कि मैं कर क्या रहा हूं, ज्ञान मार्ग पर चलने के बाद भी मुझे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अगर ज्ञान वाली जीवन है, अगर मैं शूद्र से निकलकर ब्राह्मण बना हूं तो मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म, और वो सुकर्म माना ही जो ज्ञान मिला है उसका आधार, कर्म का आधार वो ज्ञान हो। तो बाबा ने बहुत सुंदर एक मुरली है, 31 दिसंबर 1970 की, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक क्या परिवर्तन लाना है, एक एक बात पूरी बताई है। पहला परिवर्तन बताया, जैसे ही अमृत वेले आंख खुलती है सबसे पहला संकल्प परिवर्तन का क्या होना चाहिए। जब शूद्र थे तो देहभान में ही उठते थे ना, और अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद भी उसी भान में उठे तो ब्राह्मण क्या हुए, हम शूद्र ही हुए ना। तो आंख खुलते ही ये संकल्प आ जाए, मैं आत्मा, तो होता है ये चेकिंग क्या होता है। और अगर नहीं होता है तो मेरे श्रेष्ठ कर्म जमा कहाँ हो रहे हैं? और अगर ये श्रेष्ठ कर्म नहीं हो रहा है, मैं देहभान में ही हूं, तो वो विकर्म में ही तो काउंट हो रहा है। विकर्म में ही तो काउंट हुआ ना, वापस वो ब्राह्मण बनने के बाद भी किस में काउंट हो रहा है? वो विकर्म में ही काउंट हो रहा है। जबकि लक्ष्य क्या है? विकर्माजीत बनने का, विष्णु वंशी बनने का। और जैसे कहते, जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण होने चाहिए। तो यही अपने से बात करनी होती है एकांत में बैठकर, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के अनुकूल मेरे में लक्षण है, चेक करने होते हैं अपने आप से। और इसीलिए कहा कि वही वही बाबा का ज्ञान पुनः पुनः पढ़ना है, सुनना है, गहराई से उसको समझना है। तो बाबा कहते, पहला संकल्प का परिवर्तन, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो ये सुकर्म में गिनती हो जाएगा। किसने सिखाया? और देह हूं तो देह के माता पिता याद आते हैं कि मैं फलाने का हूं, फलाने मेरे संबंधी है। लेकिन अब मैं आत्मा हूं तो मैं किसका हूं? तो पहला परिवर्तन, मैं कौन हूं? कल यही सीखा ना शाम के योग में, अपने आप से प्रश्न पूछो। तो पहला परिवर्तन, मैं कौन हूं? जैसे ही आंख खुलती है, मैं आत्मा हूं। दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूं? परमपिता परमात्मा का हूं। सर्व संबंध किससे है? उसी परमात्मा से है, उसी एक से है। प्राप्तियां किससे हैं? उसी एक से है। तो सर्व संबंध का अनुभव मुझे किससे लेना होगा? अगर वही सब कुछ है, उसी से लेना होगा। प्राप्तियां मुझे उसी से होगी। क्या प्राप्तियां होगी उसी से मुझे? क्या प्राप्तियां होगी? एक पिता से बच्चे को क्या प्राप्ति होती है? जो पिता के पास होगा वही होगी ना। पिता के पास इंजीनियरिंग की नॉलेज है तो पिता उसी तरीके से उसको समझाता है। पिता के पास डॉक्टर की नॉलेज है, डॉक्टर की, तो उसी प्रकार से समझाता है। ऐसा ही होता है ना। तो पिता के पास जो है वही मिलता है। पिता के पास जितना धन होगा उसी में से मिलेगा। इसके पास क्या है? सब में क्या है? ज्ञान का सूर्य कहते हैं उसे, गुणों का सागर कहते हैं उसे, शक्तियों का भंडार कहते हैं उसे। ज्ञान, गुण और शक्तियों की संपदा अपरंपार है, उसमें अनंत है, बेहद है। तो अगर मैं ऐसे पिता की संतान हूं तो चेक फिर से, मैंने ये कर्म किया, गुण प्रदर्शित हुआ, अवगुण प्रदर्शित हुआ। मतलब मेरे पिता से प्राप्ति नहीं ना, प्राप्ति होती तो वही प्रदर्शित होता ना। मेरे पापा बहुत धनवान हैं, मेरे लिए बहुत सारे ड्रेसें खरीद के लाए हैं, लेकिन मैं एक फटी पुरानी ड्रेस पहन के बाहर निकलता हूं तो लोग क्या समझेंगे? किस बाप का बच्चा है, किस बाप का बच्चा है? कई बार हमने नोटिस किया है, जब छोटे होते हैं ना बच्चे, एकदम छोटे, जिसको गोद में लेकर या भी जलना सीखा है, तो उसको जब बाहर लेके जाना होता है ना, क्या कहते हैं उस घर वालों को, इसको अच्छी से तैयार करके दो, अच्छी वाली ड्रेस पहना के दो, ये क्या फटा पुरा नहीं पहनना है, ये मैला, इसको बदल दो। कहते अब भी तो बदला था, नहीं ये गंदा हो गया है, किसके साथ जाएगा ये, मेरी ना कटेगी। बोलते नहीं बोलते हैं। तो जिस पिता से इतनी प्राप्तियां हैं, गुणों की, शक्तियों की, तो मेरे कर्म में क्या आ रहा है वो चेक करते जाऊं। और अगर आ रहा है मतलब पिता के साथ संबंध है, बाप की याद बनी हुई है, और नहीं आ रहा है मतलब, तभी कहा ना, याद तो करना है। कब याद करना है? सिर्फ बैठक में? सारा दिन अमृत वेले से लेकर रात तक मेरे हर कर्म में अगर मैंने उसके ज्ञान को यूज किया, मैंने उसको ही तो याद किया, उसको ही तो याद किया ना, तो मैं कौन, ये परिवर्तन, मैं किसका, सर्व संबंध किसके साथ, प्राप्तियां कौन सी, ये अमृत वेला जो योग कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अमृत वेला योग के बाद क्या करोगे, फिर क्या करोगे, नित्य कर्म में चले। यहां पे भी क्या कहा आपको, अमृत वेला करके सभी वापस अपने कमरों में जाएंगे और तैयार होके फिर ओम शांति भवन में पहुंचेंगे। तो नित्य कर्म के लिए जाते हैं ना, स्नान आदि करने के लिए, स्नान के समय क्या सोचेंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे, ये चैतन्य, ये इसमें आत्मा चैतन्य मूर्ति बैठी हुई है और ये शरीर इस चैतन्य मूर्ति का मंदिर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद ही मूरत भी हूं और खुद ही ट्रस्टी भी हूं इस मंदिर का। तो क्या ये स्मृति का परिवर्तन है, ब्रह्मा बाबा के लिए बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब कभी स्नान के लिए जाते थे और कोई आ जाता था और ब्रह्मा बाबा को नहीं आवाज देके हम कह दो शिव की शिव पर क्या, शिव के रथ पर लोटी चढ़ा के आ रहा हूं, मतलब बाबा को कितनी स्मृति थी, माना हर संकल्प का बाबा ने परिवर्तन किया। जो पहले शूद्र वाले जीवन में थॉट्स होते थे, अब वैसे वाले थॉट्स नहीं, वैसे वाले विचार नहीं। और इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसी आत्मा रही जो बहुत कम समय में विकर्माचीत कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, मात्र 33 वर्षों में, जबकि विकर्मों का बोझ कितने वर्षों का है, 63 जन्मों का। और कितने जल्दी उसने फटाफट उसको उतार दिया, मात्र 33 वर्षों में, कारण हर संकल्प में परिवर्तन लाया। क्या है लक्ष्य, महसूसता द्वारा संपूर्णता, क्या संपूर्णता, बाप समान संपन्न संपूर्ण। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे परिवर्तन किया, एक एक संकल्प का परिवर्तन, वो एक एक संकल्प का परिवर्तन करेंगे ऑटोमेटिकली मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा, मेरा हर कर्म सुकर्म की गिनती में होगा, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गिनती में होगा। अगर नहीं किया है परिवर्तन, वो लौकिक रीति वाला ही है, तो वापस हम विकर्म की ही लिस्ट में है हमारे सारे कर्म, ब्राह्मण बनके भी। ये अपने आप से बैठ के बात करनी होती है। उसके बाद कहाँ आओ, स्नान करके मुरली क्लास में आओ, मुरली क्लास में ना ईश्वरीय पढ़ाई, फिर वहां स्मृति का परिवर्तन। कौन सा स्मृति का परिवर्तन, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, कौन आया है मुझे पढ़ाने, कहां से आया है, क्या पढ़ा रहा है, ये स्मृति। इसके कई बार बाबा मुरली में कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं, क्या जरूरत है ये बोलने की। कभी भी किसी सभा में ऐसे बोला जाता है क्या, पर भगवान ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि भगवान को पता है ये वो आत्माएं हैं जो 63 जन्मों तक देह से लिप्त हो गई थी, देहभान में देहाभिमान में है, और वहां से निकालने के लिए वो कहता है मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं, अर्थात आप भी आत्मिक स्मृति में बैठकर इस पढ़ाई को पढ़ो। संदली पर मुरली पढ़ने के लिए निमित्त कौन है उसको मत देखो, जो मुरली पढ़ी जा रही है वो बोल किसके हैं, वो महावाक्य किसके हैं, हम अगर चेक करें तो मेजॉरिटी हमारी स्मृति रहती है और हम फिर बोलते हैं मैंने फलाने की मुरली सुनी। ज्यादा स्मृति क्या रहती है, फलाने की स्मृति मुरली या बाबा की मुरली? ये परिवर्तन लाना है। हम बाबा की मुरली फलाने ने सुनाई, परिवर्तन हुआ, लेकिन मैंने फलाने की मुरली सुनी, किस लिस्ट में चला गया? ये थोड़ा थोड़ा ही तो परिवर्तन लाना है। ये छोटे छोटे परिवर्तन ही हमारे हर कर्म को सुकर्म बनाएंगे, श्रेष्ठ कर्म बनाएंगे। अन्यथा ये छोटी छोटी निग्लेक्शन ही मेरे विकर्म के खाते को बढ़ाते जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, अनजान असमझ बच्चा गलती करे माफ, और समझदार व्यक्ति करे तो अब हम शूद्र तो है नहीं ना, तो ब्राह्मण होके भी अगर वही करे तो विकर्म तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना हमारे, उतने के उतने नहीं रह जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा उनका। तो मुरली सुनते समय, इसीलिए का ज्ञान बहुत आ गया है हमारे पास, ज्ञान का स्वरूप बनने की आवश्यकता है। कमेंट्रियों द्वारा बहुत योग हो गया, कमेंट्री द्वारा योग माना हम संकल्प चला रहे, तो हम सोचना स्वरूप बने हैं, स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं। हम परमधाम में हम सोचना स्वरूप हैं? है क्या हम सोचना स्वरूप परमधाम में? नहीं है, हम स्मृति स्वरूप हैं। वो तो नए नए होते हैं तो ABCD सिखानी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, लेकिन थोड़े आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा क्या? बदल जाएगा ना, समझ गहरी होती जाएगी ना। तो यहां पर भी जब नए नए होते हैं तो थोड़ी आइडिया दी जाती है और उससे हम आगे बढ़ते भी हैं। छोटा बच्चा चलता है दीवार को हाथ पकड़ के, माँ बाप का हाथ पकड़ के, लेकिन सारी उम्र ऐसा चलेगा क्या? और अगर सारी उम्र ऐसे चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जामड़ा। हाँ, जामड़ा कहेंगे ना। लेकिन हम आजकल देखते हैं, हमने कई जामड़े भी देखे, अपने BKS में भी होते हैं, पर वो भी जामड़े भी कोई हाथ पकड़ के नहीं चलते, हमेशा छोड़ दिया जाता है सपोर्ट। लेकिन हम कहें कि वही वाला सपोर्ट लेके चलेंगे, तो हम अभी स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं, हम सिर्फ सोचना स्वरूप बने हैं। और जब तक स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे वो परिवर्तन नहीं आ सकता है। वो स्मृति स्वरूप बनते समय ही योग की अग्नि तैयार होने वाली है और तभी विकर्मों का विनाश होने वाला है। और योग की अग्नि कोई ऐसी अग्नि जैसे होती है वो नहीं होती है, योग की अग्नि उसको नहीं कहते, वो तो कंपैरिजन की जाती है ना बात को समझने के लिए। लेकिन योग, उन दोनों का कनेक्शन ऐसा हो जाता है कि वहां की वाइब्रेशन इस वाइब्रेशन को, माना इस आत्मा की वाइब्रेशन को अपनी वाली वाइब्रेशन पर सेट कर देती। यही तो कहते हैं ना, योग की अग्नि से पतित से पावन। मतलब क्या किया योग की अग्नि से? परमात्मा पावन है, उसने अपने जैसा बना दिया मुझे, जबकि मैं गई थी उसके पास पतित, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपने जैसा पावन बना दिया। तो कहा योग अग्नि से वो सब जल गया। तो छोटे छोटे परिवर्तन लाकर ही हम सचमुच में विकर्माजीत बन सकते हैं। इसी को कहा कि विकर्माजीत बनना है तो बाप की याद में रहो। बाप की याद सिर्फ बैठक वाली याद नहीं होती है, लेकिन बाबा के ज्ञान की एप्लीकेशन भी क्या है, बाप की याद है। फिर बाबा ने कहा, मुरली पढ़ने के बाद फिर क्या करते हो? ईश्वरीय पढ़ाई हो गई, उसके बाद नाश्ते पे जाते हो। अभी आप तो भट्टी में आए हो, नहीं तो नाश्ते के बाद फिर क्या करोगे? अपने कर्म क्षेत्र में आओगे ना, कर्म करोगे अर्थात सेवा करोगे। अगर हम शूद्र है तो हम कहते हैं लौकिक संबंधियों के साथ उनके कर्म बंधनों में फंसे हैं, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन अब शूद्र नहीं है, अब मर्जी वह जन्म हो गया है हमारा, और इसलिए अभी हमारा संबंध कर्म का, कर्म बंधन नहीं होगा, सेवा का संबंध होगा। सेवा के संबंध से हम आ रहे हैं सबके बीच में, कर्म के बंध स्मृति में परिवर्तन। व्यवहार चाहे प्रवृत्ति में है चाहे सेवा में है, ये परिवर्तन लाने की आवश्यकता है कि मेरा सेवा का संबंध है। और जब सेवा का संबंध होगा तो क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि संबंध संपर्क में आते, कई ऐसे संबंध संपर्क हो गए जहां लगेगा कि ये तो अति पाप आत्मा है, ये तो अति अपकार करती है मेरा, ये तो मेरे लिए जैसे बगुले का काम कर रही है। तो सेवा का संबंध नहीं होगा तो उसके साथ नफरत आएगी, घृणा आएगी, उसका निरादर का भाव, उसके मन में रिस्पेक्ट ना होके डिसरिस्पेक्ट होगा। अभी निरादर, डिसरिस्पेक्ट, घृणा, नफरत क्या है? विकारों के अंश है। तो जिस संबंध संपर्क में आ रही, मेरा क्या बनते जा रहा है? विकर्म बनता जा रहा है। बाहर में भले मैं नहीं शो कर रही हूं, लेकिन अंदर में वो भाव है, तो कौन सी काउंटिंग में चला जाएगा मेरा कर्म? विकर्म में चला जाएगा। इसलिए सेवा का संबंध होगा तो, क्योंकि बाबा ने हमें विश्व सेवा के लिए चुना है, और विश्व सेवा करते समय, क्योंकि बाबा ने बता दिया ये वैरायटी ड्रामा है, हर आत्मा अपनी जर्नी पे आई तो सब शुद्ध थी, लेकिन हर एक की जर्नी अलग अलग। किसी को काम मिला पेंटिंग के क्षेत्र में, तो नहा धो के निकला था, साफ सुथरे कपड़े पहना था, और वो एप्रन आदि जो भी पहना था, खूब बचाने की कोशिश की पेंटिंग करते करते, पर फिर भी वस्त्र पर कहीं ना कहीं लाल नीला पीला लग ही गया। किसी का कर्म क्षेत्र है किचन, उसने भी नहा धो के सफेद वस्त्र पहन के, एप्रन आदि पहन के गए किचन में, बहुत कोशिश की संभाल संभाल कर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तेल का छींटा, हल्दी का दाग लग ही गया। तो हर एक आत्मा का वैरायटी पार्ट है। ये ज्ञान अगर प्रैक्टिकल में उतर लेके उतरूंगी तो निरादर, घृणा, नफरत किसका स्थान ले लेगी? रहम का स्थान ले लेगी। रहम भाव जागृत होगा, रहम भाव, तरस आएगी कि क्यों नहीं इनको भी जल्दी से बाबा का परिचय मिल जाए। हम भी पहले ऐसे थे, लेकिन हमको मिल गया, हमने जीवन में परिवर्तन लाया, इनको भी फटाफट बाबा का परिचय मिल जाए। और उस आत्मिक दृष्टि से देखते हुए हम उसको वाइब्रेशन देते हैं कि यह आत्मा भी जल्दी से बाबा के ज्ञान में आ जाए, बाबा से जुड़ जाए। तो परिवर्तन तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा कर्म किस में काउंट हो जाएगा? सुख कर्म में, श्रेष्ठ कर्म में जमा हो जाएगा। यही विधि है विकर्माजीत स्थिति को प्राप्त करने की। फिर क्या होता है? बाबा ने कहा और आगे चलो, व्यक्तियों, वस्तुओं, वैभवों के संपर्क में आते हो। व्यक्तियों के संपर्क में आओगे, अगर दैहिक भाव होगा, व्यक्त भाव होगा, तो फिर फंसने वाली बात हो जाएगी। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आओ, आत्मिक भाव, और जब वस्तु वैभव के संपर्क में आओगे, दैहिक भाव में ही है, आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी, लेकिन अब तो मुझे सुकर्म करना है, मतलब कौन से भाव से उन वस्तुओं को, उन वैभवों को देखना है, अनासक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं, आसक्त भाव तो मैग्नेट की तरह फंसा देगा, लेकिन अगर अनासक्त भाव होगा तो यही वस्तुएं, यही वैभव दासी के रूप में हमारे सामने हाजिर होंगे हमारे सेवा के लिए। तो कौन सा भाव होता है जब हम वस्तुओं को और वैभवों को देखते हैं? फिर बाबा ने कहा, आकर्षण में दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं, साधनों को भी यूज करते हो, फिर साधनों को यूज करते करते साधनों पर फंस जाते हो, उनके अधीन हो जाते हो। ये साधन क्यों यूज करना था? लक्ष्य क्या था? साधन यूज करना जीवन में, या साधना के लिए यूज कर रहे सब? तो साधना के मार्ग पर चलते चलते साधनों में मत फंस जाओ, साधना की ओर बढ़ो, नहीं तो हम साधन स्वरूप बन जाते हैं। बनना था सिद्धि स्वरूप, हाँ, बनना था सिद्धि स्वरूप, और बन क्या रहे हैं? साधन के स्वरूप। तो साधन के स्वरूप बने माना फिर किस लिस्ट में गया मेरा कर्म? तो अगर मैं इस रीति से चेक करूं, सच्चे दिल पर हाथ रखकर, सच्चाई से, तो अंदर में आएगा, आज दिन तक मैंने श्रेष्ठ कर्म तो कम ही जमा किए हैं, अगर जमा किए हैं तो विकर्म। ये जब चेकिंग करेंगे तब जाकर फीलिंग आएगी ना, उसी के लिए बाबा ने इतना सुंदर रूहानियत भरा वातावरण दिया है कि इस रूहानियत भरे वातावरण में बैठकर चेकिंग करो, अग्रसर हो अपने लक्ष्य की तरफ। कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखे में ही रह जाए कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं, लेकिन जब ऐसी बातें, बाबा कहता है ना कि जब किसी को जो भी सजा मिलेगी, साक्षात्कार कराया जाएगा कि आपका ये पद, आपकी ये सजा किस कारण से, वो दिखाया जाएगा, और तब महसूस करेंगे मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं था, मुझे ज्ञान होता तो मैं शायद, वो इसीलिए कई बार बताते हैं ना, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ डेथ एक्सपीरियंस करते तो वो जब उस पीरियड में होते तो क्या देखते, जीवन की रील पूरी सामने घूमती है, और वहां उनको एहसास होता है मैंने ऐसा जीवन जिया है, काश मुझे एक बार फिर से जीवन जीने का अवसर मिले, मैं अब ऐसा जीवन कदाचित नहीं जीऊंगा, एक सुंदर वाला जीवन जीऊंगा। बताते हैं ऐसे, तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का टाइम है ये आपका, ये भट्टी क्या है, क्योंकि उस दुनिया से मर के इधर आ गए ना, जो भी कारोबार, जो भी जिम्मेवारी, मुझे मत बोलो अभी, मैं अपनी उन्नति के लिए उस दुनिया से मर गए कारोबार से। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में देखो अपने जीवन की रील को, और जब जीवन की रील को देखोगे उसमें दोनों होते हैं, उनको क्या क्या दिखाई देता है, प्रकाश भी दिखाई देता है, एक ऐसा प्रकाश जो मुझे प्यार कर रहा था ऐसा फील होता है, अनकंडीशनल लव मुझे उससे मिल रहा था, और फिर जीवन की रेल भी आई सामने, और फिर एहसास किया, यहां दोनों करना है, बाबा को याद भी करना है, उस प्रकाशवान परमात्मा के पास चले जाना है, उसके अनकंडीशनल लव को अनुभव करना है, और वही कह रहा है जीवन की रेल को देखो बच्चे। और इसीलिए दादियां कहती है कि हमारे जमाने में जब हम बाबा के पास आए तो बाबा ने हम सबको कहा, अपनी जीवन कहानी लिखो, मतलब उसको देखने के लिए समय देना ही पड़े। तो कई बार हम सोचते ये तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, कई बार ऐसा सोच चलता है, क्या जरूरत पड़ी है जीवन को देखने की, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। परंतु परिवर्तन कैसे लाओगे, मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये विकर्म है, तो आप सुकर्म कैसे करोगे? फिर पहले पता तो चले कि मैं विकर्म की लिस्ट और मैं इस धोखे में हूं कि मैं तो सुकर्म कर रहा हूं बहुत। तो अनासक्त भाव, सिद्धि स्वरूप बनो, साधना करने के लिए आए हैं, साधन स्वरूप बनने के लिए नहीं। और भी बाबा ने बात कही है, तो वो मुरली की मैंने डेट आपको दे दी है, तो आप उसको अच्छी से स्टडी करना। लास्ट में सोने की बात थी, तो मैं सोने की बात कह देती हूं। सोने की बात ये थी कि सोना भी बेड पे नहीं, लेकिन सुनहरी दुनिया में, सुनहरी दुनिया में ले जाने वाले बाप की गोद में सो जाओ, तब जाके वो सोने का भी कर्म किस में काउंट हो जाएगा? सुकर्म में काउंट होगा, श्रेष्ठ कर्म में काउंट हो जाएगा। और तब जाके धीरे धीरे हम सुकर्मी की लिस्ट में आएंगे, विकर्मी की लिस्ट से निकलकर सुकर्मी के लिस्ट में आएंगे, अर्थात विकर्मा जीत बनेंगे। तो ऐसी याद अमृत वेले से लेकर रात तक याद चलती रहे, सिर्फ बैठक वाले योग में नहीं। और बैठक वाले योग में भी अटेंशन देना है कि जैसे हमने कहा परम धाम में सोचना स्वरूप नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मृति स्वरूप। हाँ, हो सकता है अभी नए नए हैं तो स्मृति स्वरूप माना मौन स्वरूप लंबा समय नहीं टिके, पर अभ्यास तो शुरू करो कि बस संकल्प के ऊपर संकल्प, संकल्प के ऊपर संकल्प, आधा घंटा पूरा हो गया, योग पूरा हो गया। तो सोचना स्वरूप में चले गए थे, स्मृति स्वरूप तो थी ही नहीं। जब स्मृति स्वरूप होगी तो ही उसके वाइब्रेशन मेरे ऊपर काम करेंगे। एनेस्थीसिया देता है डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले, और अगर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसको काटनी थी अतड़ी और कट जाएगा कुछ और। तो ऐसे ही बाबा भी ऑपरेशन नहीं कर सकता हमारे पर अगर हम मौन नहीं होते हैं। हम वैसे भी कहते हैं ना कि अरे आपने, मैंने फोन पे बात किया तो आपने तो बताया नहीं, तो हम क्या कहते हैं, आपने बोलने का चांस किधर दिया, आप ही आप बोले जा रहे थे। तो भगवान भी यही कहता, आप ही आप बोले। हम लोगों को बताते हैं प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या बताते अंतर? प्रार्थना माना मैं ही बोले जा रहा हूं, और मेडिटेशन माना तो रुकना नहीं पड़ेगा क्या मुझे? रुकना पड़ेगा या नहीं रुकना पड़ेगा? कि मैंने बोल दिया, फिर मैंने बोलकर उसके पास जाके समर्पित कर दिया। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर ऑपरेशन करना है, तो पहले तो डरते ये वो बहुत सारी बात होती है, लेकिन फिर मन बना लेते, निश्चय हो जाता है, तो फिर समर्पण कर देते हैं अपना शरीर उसको, जो करना है करो, निश्चय बुद्धि के साथ गए। ऐसे ही बाबा के ज्ञान को पहले समझ लिया अच्छे से, और अब जाके मुझे समर्पित हो जाना है, बाबा मैं आपके पास परम धाम में आ गया, अब आपको जो करना है करो। तब उस समय वो परमात्मा आपकी सर्जरी करता है, और उस सर्जरी में अपने विकर्मों की गांठ निकाल देता है, जो बोझा है ना उसको निकाल देता है, और हम हल्के हो जाते हैं, और न सिर्फ गांठ निकालता है अपनी शक्ति से भी भरपूर करता है। तब कहते हैं कि योग करने से हल्का भरपूरपन अनुभव हो रहा है, भरपूरता अनुभव हो रही है। तो ऐसा योग आज तो आपको कहाँ जाना है, सैर करने जाना है, लेकिन वहां भी तपस्या होगी आपकी। तो ऐसा योग करना कल भी और आज की शाम को भी। ओम शांति।
ओम शांति। हमारी आदरणीय इंदिरा देवी जी का सभी एक हाथ से धन्यवाद करेंगे। कितना अच्छा विक्रमाजीत कैसे बने उस पर क्लास कराया। तो दीदी जी, आपको हमारे बनारस जोन के भाई बहनों की तरफ से बहुत 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 थैंक्स।
शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।